Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll.
Halanki mein us raah ko nahi janta, par Prabhu tu janta hai. ये सब व्यर्थ है, बेकार की है चीजें हैं कि मैं चिंता करूं. के भय के कारण मेरा दिल कंपित हो जाए, धड़कने लगे. तू ही रास्ता है प्रभु, तेरे को ही समय का पता है. तेरी योजना तैयार है, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ. तेरी सामर्थ और तेरे प्रेम के लिए और उस अनुग्रह में मैं महिमा पाता हूँ जो तेरे द्वारा मिलता है. और तेज हवा किस दिशा से आती है तू जानता है, और तू उसके ऊपर नियंत्रण भी रखता है, और तू कभी भी देर से नहीं कार्य करता. इसलिए मैं बड़ी स्थिरता से तेरा इंतजार करता हूँ और तेरे वचन में कोई झूठ नहीं है. तू ही जानता है, तू ही रास्ता है, और मेरे लिए यही काफी है. तू मेरे लिए मेरे राह को जानता है, और मेरे लिए यही काफी है.
Wir beginnen diesen Gottesdienst, diese Wortbetrachtung.
हम आज शाम की सभा को इस सुसमाचार और इस उद्धार के काम के लिए हम सभी और भाई और बहनों का अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, जो कि हमारे मित्रगण और भाई बहन सारी दुनिया से एक बड़े तहे दिल से गर्म जोशी से हम उनका स्वागत करते हैं. हम बड़े आभारी हैं कि प्रभु ने हमारे जीवनों में ये होने दिया, इन तमाम महामारी के कारण जो सारी दुनिया में फैली हुई है, कि हम फिर भी प्रभु का वचन सुन सकते हैं. हम बड़े धन्यवादी हैं, बड़े आभारी हैं, और जो अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम उनके भी बड़े आभारी हैं, और जो टेक्निकल सपोर्ट भाई दे रहे हैं, और दो बहनों का जिन्होंने कि लाइव आकर के यहाँ गाना गाया. प्रभु हम सबको आशीष दे, एक रूप में, एक समूह में आशीष दे, और उसकी आत्मा के द्वारा और उसके संदेश और वचन के द्वारा. इससे पहले के भाई स्मिथ यहाँ पर आके प्रार्थना करें, उसके बाद भाई फ्रैंक हमारे से आज का वचन बांटेंगे. मैं हम लोगों के लिए एक वचन से एक संदेश पढ़ूंगा. हम जानते हैं कि अनुग्रह का जो समय है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, और इस साल का जो दूसरा आखिरी हिस्सा है, आखिरी भाग है, वो प्रारंभ हो गया है, स्टार्ट हो गया है, और लॉर्ड और प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, और हम इंतजार में हैं. और ये जो उद्धार का वचन है ये अपना कार्य पूरा कर रहा है, कि प्रभु हमको तैयारी करा रहा है, हमारी तैयारी कर रहा है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से पढ़ेंगे और 14वीं अध्याय से 14 बाब, यूहन्ना 14 बाब, 14 चैप्टर, 14 यूहन्ना 14। यहाँ प्रभु कहता है पहली आयत से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं। मैं कितना आभारी हूँ प्रभु का जो इस वचन से कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यानी घबराओ मत, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पे भी विश्वास रखो। देखिए, हम यही तो करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं आज रात भी, शाम को भी। और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, कितना बड़ा वादा, कितनी बड़ी वाचा कि उसने ये किया हमसे वादा कि वो हमें लेने के लिए दोबारा आएगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि जहाँ वो है वहाँ हम भी रहें, उसके नाम की महिमा हो और उसके अद्भुत और अलौकिक वचन के लिए, अमूल्य वचन के लिए जो कुछ भी प्रभु कर रहा है। और अब मैं भाई स्मिथ से दरखास्त करूंगा कि वो आकर के हमारे साथ प्रार्थना करें।
Vater im Himmel, wir sind hier und wenn auch,
हमारे स्वर्गीय पिता,
wie sonst,
हम इस समय,
aber wir wissen, alle die,
चाहे हम बहुत सारे यहाँ पर नहीं हैं इस कमरे में, पर हम जानते हैं जो तेरे वचन पर विश्वास करते हैं और जो तुझ पर विश्वास करते हैं, इस प्रकार से इस विश्वास के द्वारा हम तेरे नाम में और तुझ में एक हो जाते हैं, और हमारे लिए संभव हो जाता है कि हम तेरे वचन को सुन सकें और तेरी उपस्थिति में हाजिर हो चुके हैं। हालांकि हम एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर पर दूर दूर पर हैं, पर हम तेरे नाम में एक हैं प्रभु, और विश्वास में, जैसा कहा गया कि ये हमारे लिए संभव हो सका कि तूने ही ये संभव किया हमारे लिए कि हम तेरे वचन को सुन सकते हैं, और जो तूने हमारे लिए दिया और जो तूने हमारे लिए बांट दिया, रख दिया, और हम में से इस हम किसी भी समय इसमें से खा सकते हैं। और प्रभु तेरे इस भोजन से आनंदित हो सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि जो इस वचन को ग्रहण करते और विश्वास करते हैं और जो तुझ पर विश्वास करते हैं, हम सब पर दया कर, हमको इकट्ठा रख, एक रख, अपने वचन में एक रख, और अपनी आत्मा के द्वारा एक रख, और अपने अनुग्रह में एक रख, कि हम सब, क्योंकि हम सब जो कि अनंत जीवन के लिए नियुक्त किए गए हैं, हम जा सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। मैं भी आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अद्भुत नाम में, अमूल्य नाम में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं बहुत सारे भाइयों की ओर से अभिवादन करता हूँ जो साउथ अमेरिका से भाइयों ने कहा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सभी जगह से, साउथ अफ्रीका से, सेंट्रल अफ्रीका से और यूरोप से, सभी जगह से हम प्रभु में एकत्रित हैं। और डॉक्टर बीए ने मुझसे कहा कि कलीसिया को, सारे संसार की कलीसिया को अभिनंदन करें मेरी ओर से कि उस इस प्रकाशित, इस खालिस संदेश के लिए, वचन के लिए भाई गोंगा, भाई सिसिल, भाई एंड्रे मॉन्ट्रेल से, भाई नियागी नैरोबी से, ये तो कई सारे नाम हैं जो हम लेते ही जाएंगे, और बहुत सारे भाई लोगों ने स्विट्जरलैंड और जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, सारे यूरोप से, सब जगह से लोग ग्रीटिंग दे रहे हैं। और खास तौर पे मैं आनंदित हूँ कोर्डोबा से, अर्जेंटीना से जो मुझे फोन कॉल आई, वो भी सुन रहे हैं और वो भी देख रहे हैं और इसके अंदर हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, और मोजम्बिक से और सब जगह से, कि प्रभु को इस चीज का धन्यवाद हो। हम एक बहुत ही खास और अद्भुत समय में रह रहे हैं और इस समय में हम और नजदीक बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ भी अब बाकी बचेगा नहीं बाद में जैसे कि पहले था। अब तो ये दिन पर दिन अच्छा होने की जगह संसार जो है ये खराबी की तरफ जाएगा, अच्छाई भलाई की तरफ नहीं जा रहा यह संसार। अब यहाँ पर दुष्टता बढ़ती जा रही है जैसा हमने सुना वचन से। हम तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं, जैसा कहा गया कि उन सभी भाषाओं के लिए जिस और तकनीकी सहायता के लिए, हम सब चीजों के लिए प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं। और हम जानते हैं कि सारी दुनिया इस वचन से आशीषित है, और हम अपने समय को देख पा रहे हैं कि हम इस आखिरी पुकार को, इस आखिरी संदेश को सुन पा रहे हैं और अनुभव कर पा रहे हैं, और हम अपनी अपनी व्यक्तिगत तैयारी में मगन हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए बहुत आवश्यक और जरूरी है, और हम जानते हैं कि ये कहा जाना चाहिए मत्ती 24 में हमको एक वचन दिया गया, वादा दिया गया एक आत्मिक भोजन का, कि ये भोजन जो है ये बांटा जाएगा। और आमोस 8 में भी ये वादा दिया गया कि प्रभु जो है वो रोटी, सांसारिक रोटी का नहीं, सांसारिक पानी का नहीं, बल्कि उस वचन के लिए जो आत्मिक भोजन है उसके लिए। और फिर भाई ब्रैनम की गवाही हम जानते हैं, उन्होंने कहा और हम इस पर विश्वास करते हैं कि हम अपने हृदयों से, मनों से विश्वास करते हैं कि प्रभु ने अपने सेवक को भेजा कि वो इस आखिरी संदेश को लेकर आए। और भाई और बहनों, हम प्रभु के सामने कह सकें, ये जो बाइबल है, हमारे पहली वाचा और दूसरी वाचा, यानी कि पुराना नियम और नया नियम दोनों है, और जो नियम है, जो वाचा है, टेस्टमेंट है, उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उस वाचा में, जो वाचा यानी कि टेस्टमेंट होती है, वसीयत होती है, उसमें जितने विरासत पाए वाने लोग होते हैं, जो उससे फायदा हासिल कर सबके नाम होते हैं और प्रभु का जो मेमना है, परमेश्वर का जो मेमना है, वो तो इस संसार की सृष्टि से पहले ही वध किया जाने के लिए तैयार किया गया था। ये प्रभु की योजना सृष्टि से पहले थी, जिससे कि वो नया नियम आ सके, वो नई वाचा आ सके, जिससे कि पापों की क्षमा मिले और उद्धार का कार्य हो सके, जिससे कि मैं और आप, हम सब जो इस चीज के लिए तैयार किए गए हैं, हम सबको सृष्टि से, इस दुनिया के बनाए जाने से पहले प्रभु ने तैयार किया, और इससे कि वो अपने अद्भुत और अलौकिक वचन को हमारे ऊपर जाहिर कर सके, प्रकाशित कर सके, और हम उसके उन वादों का हम अनुभव भी कर सकें। और आज ये मेरे दिल पर बोझ है कि मैं इन बातों के बारे में कहूं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अपने वचन के ऊपर निगरानी किए हुए है, ताके हुए है, और जिस प्रकार से हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं और उनको सुनते हैं, इसी प्रकार से प्रभु भी हमारे विश्वास के अनुसार उन वचनों को हमारे जीवन में पूरा करता है। इस विषय पर ये वो विषय है जिससे कि सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी। मैं दो वचन पढ़ूंगा। हम सब जानते हैं कि प्रभु अपने आप ही अपने उस काम को पूरा करेगा जो उसने अपनी ब्राइड नामा कलीसिया के लिए बनाया है। यशाया की पुस्तक में हम देखते हैं, यशाया 28 अध्याय में हम देखते हैं, यशाया 28 और 21, यशाया 28 और 21, क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वो पराजिम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ, जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वो अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वो अपना काम करे जो अचंभित काम है और वो कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, और वो अपने उस काम को पूरा करेगा, वो अचंभित काम, जो अनोखा काम, उसको प्रभु स्वयं पूरा करेगा। और प्रभु ने इस काम को स्वयं किया, इसको छुटकारे के काम को उसने स्वयं किया, और जिसने इसको शुरू किया वही इसको खत्म भी करेगा, समाप्त भी करेगा, पूर्ण भी करेगा। और सामर्थ्य और परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो प्रकट होगी, और जब सारी चीजें वापस बहाल कर दी जाएंगी। और जब हमारा प्रभु के साथ व्यक्तिगत संपर्क और संबंध है, देखिए सुने, क्योंकि 21वीं आयत में प्रभु ऐसे उठ खड़ा होगा जैसा वो पराजिम नामक पर्वत पे उठ खड़ा हुआ था, और जैसे गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, और वो अपना काम अपनी कलीसिया के लिए, इज़राइल के लिए भी करेगा, और सारे संसार के लिए अपने काम को कामिल करेगा, पूरा करेगा। अब हम देखें यहोशू की पुस्तक, यहोशू 10 अध्याय, यहोशू 10 अध्याय, Yehoshua 10 और 12, और तब यहोशू ने कहा उस समय अर्थात जिन अमोरियों को इसराइलियों के बस में यहोवा ने कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों को देखते हुए कहा, उसने कहा हे सूरज तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्योन की तराई पे थमा रहे। यहाँ पर देखिए यहाँ कितना सामर्थ्य काम हो रहा है। यहोशू पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहाँ परमेश्वर ने किस प्रकार उससे बात करी, जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था उसी प्रकार मैं तेरे साथ भी हूँ हे यहोशू, और साहसी रहे और हिम्मत रख, क्योंकि ये जो प्रकाशित वचन है ये वचन तो उस अहद के संदूक में था, उसमें वचन था, और यहोशू के लिए ये बहुत जरूरी था, आवश्यक था, और वो कंधों पर उठाना बहुत आवश्यक था, और उसके अंदर वो वाचा का जो संदूक था उसके अंदर वो वचन था। और जब शाम हो गई, जब अभी तो लड़ाई खत्म नहीं हुई थी और सूरज डूबने का टाइम आ गया, चांद दिखाई देने लगा, और वो कहने लगा ये कैसे होगा, अभी तो लड़ाई खत्म ही नहीं हुई और रात होने को आ गई, और वो देखता है और वो कहता है हे सूरज रुक जा और चंद्रमा तू भी रुक जा, और वचन कहता है और के वहां पर और पूरा दिन चला गया और यहोशू और यहोशू को वहां पर उन दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त हुई। और देखिए फिर हम पढ़ते हैं कि प्रभु एक बार फिर से, अभी जो हमने यशाया में पढ़ा, प्रभु एक बारी फिर से उस अद्भुत कार्य को करेगा, और जहां पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया गया था प्रभु उस चीज को पूरक करेगा, वहां पर उसको कामिल करेगा, वहां उसको फिनिश करेगा, और जिससे हमारा विश्वास बेकार में नहीं जाए। कई बार ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि उन्होंने जकरिया 14 में कहा एक समय आएगा ना तो पूरा अंधेरा होगा ना पूरी रोशनी होगी, पर शाम का समय होगा जब धुंधला प्रकाश रहता है, उस समय पर प्रकाश आ जाएगा, यानी शाम के समय प्रकाश दोबारा आ जाएगा, और उसके वचन के द्वारा, और फिर जो सूरज है और चांद है वो अपनी अपनी जगह पर रोक दिए जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण, उसकी पावर के कारण। वो कहता है कि मेरे खून से खरीदे हुए झुंड के लोगों, मैंने ही इस कार्य को शुरू किया और मैं ही समाप्त करूंगा। और जिस प्रकार से हम प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं कि इस समय में भी हम वापस उस समय की ओर लाए गए हैं जो शुरू का समय था, और ये इससे कभी कभी दुख भी होता है कि उन दिनों में भी वहां पर गलत शिक्षाएं आ गई थी प्रेरितों के समय में भी, और इधर उधर की हवाएं चल रही थीं अलग अलग शिक्षाओं की, और पौलुस कहता है कि उन हवाओं के द्वारा और उन शिक्षाओं के द्वारा इधर उधर भाग मत जाना, भटक मत जाना। और दूसरा तिमोथी चार कि एक समय आ जाएगा जबकि वो खालिस शिक्षा यानी जो प्योर शिक्षा, जो पवित्र शिक्षा है, उस पर खड़े नहीं रहेंगे। और देखिए कलीसिया के इतिहास को देखिए कि क्या हुआ, और देखिए प्रेरितों के काम के बाद में क्या हुआ, प्रेरितों के समय जाने के बाद क्या हुआ, और अलग अलग जो दूत आए कलीसिया कालों में उनके समयों में क्या हुआ, मार्टिन हो, कोलंबा हो, सबके समय में क्या क्या हुआ। पर फिर एक समय ऐसा आया और एक बार सब गिरावट आ गई, और उसके बाद हजार साल इतने बुरे हजार साल निकले जब तक के सुधार का काम शुरू नहीं हुआ। उसके बाद हमने इतिहास को पढ़ा, इससे बड़ा दुख पहुंचता है, ठेस पहुंचती है, क्योंकि मनुष्य ने, लोगों ने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया, उससे फिर गए, उसको पकड़े नहीं रखा, और जब से सुधार का काम शुरू हुआ और वो कौन लोग थे, उसके बाद लूथर आया, कैल्विन आया, और उसके बाद से भाई ब्रैनम बताते हैं, समय समय पर बताते हैं कि उस समय से क्या हुआ, बाइबल की हर एक सुधार के काम में धीरे धीरे करके गहराई से प्रभु के वचन की ओर मार्गदर्शन किया गया। उसके बाद में पेंटिकॉस्टल मूवमेंट आया, पेंटिकुस का काम आया, और उसके बाद में पवित्र आत्मा का काम शुरू हुआ। जिस प्रकार भाई ब्रैनम ने कई बार कहा, उसके बाद बहाली का काम यानी कि वापसी का काम, और उस वापसी की ओर जो शुरू की असली कंडीशन थी, असली अवस्था थी, उसकी ओर वापसी का काम शुरू हुआ। जिस प्रकार हमको बताया गया, जिस प्रकार एलिया ने किया, उसने परमेश्वर की वेदी को दोबारा स्थापित किया, दोबारा से बनाया, फिर उसके बाद उसने उस पर अपना बलिदान रखा। ये क्या है मेरे लिए आज कि हम इस बात को समझ पाए कि जो कुछ प्रभु ने इस समय के लिए वचन दिया, वादा किया, भाइयों और बहनों, हम इसको खुले तौर से समझें और कहें कि जितने सुधारक थे ये बड़े अच्छे और बड़े बड़े अच्छे सेवक थे अपने समय के लिए, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, जॉन स्मिथ, ये सारे के सारे, पर ये प्रभु के जन थे, बड़े अच्छे सेवक थे, और प्रभु ने अब उस समय के अंदर इनको इस्तेमाल किया अपने कार्य के लिए। और ये बताया गया कि वो सारे वो प्रार्थना सभाओं में बराबर इकट्ठे आते थे, और किस प्रकार से परमेश्वर के आत्मा ने उनको सुधारा, पर उसी प्रकार से वो उन रीति रिवाजों में, उन शिक्षाओं में रहे, उनको कोई अच्छा सुधार नहीं मिल पाया। हमें ये कहना है कि प्रभु के उद्धार की योजना में, प्रभु की उद्धार की योजना जो है उसके वादों से भरी हुई है, उसकी वाचाओं से भरी हुई है। मैं आपसे पूछता हूं कि इन वादों को ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें। यूहन्ना के दिनों में बहुत सारे लोग थे, बहुत से फरीसी थे और शास्त्री थे, वो सब थे, बड़े ज्ञानी थे, थोरा था, वहां सबत के दिन की सभाएं होती थी, पर उस समय जब समय पूरा हो गया, प्रभु देखता रहा, प्रभु अपने वचन को देखता रहा, और जब वो समय पूरा हो गया तब प्रभु ने उस वादे को पूरा किया जो यशाया 4:43 में और मलाकाई 3। तब एक आवाज जो के बयाबान में जंगल में पुकारता हुआ एक शब्द यानी यहूना बपतिस्मा देने वाले की बातचीत, उसकी पेशन गोई, उसकी भविष्यवाणी का ऐलान हुआ, और एक वादा किया हुआ नबी भविष्य दक्षता जिसको तैयार किया गया था, जो जिसका काम था कि प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद के लिए वो रास्ता तैयार करे। और ये हमारे समय में भी लागू होता है। प्रियो, क्या बिली ग्राम एक अच्छा आदमी नहीं था? वो भाई ब्रैनम के साथ 1949 में लॉस एंजेलिस, भाई वो दोनों इकट्ठे थे, बिली ग्राहम भी और भाई ब्रैनम भी। उसने भी अपनी मिनिस्ट्री सेवकाई स्टार्ट करी, और बहुत सारे इवेंजलिस्ट थे जिनको प्रभु ने टीएल ऑसबर्न और मॉरिस सरोलो, ये सारे के सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, जो इतने अच्छे अच्छे प्रचारक, इतने अच्छे अच्छे सेवक प्रभु ने दिए। पर उसके बाद में, पर इन सब के बावजूद भी देखिए, इस बात पे ध्यान दें, प्रभु ने एक वादा किया, अपने आने के समय के पहले एक नबी को भेजेगा। ये सारे सुधारक, सारे प्रचारक बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, पर देखिए इस बात पे गौर करें कि प्रभु ने अपना जो वादा अपने आने के पहले का किया, आने के पहले मैं एक नबी को भेजूंगा जो कि सारी चीजों को सुधारेगा और बहाल करेगा। उस वादे के ऊपर आज हम खड़े हैं, आज हम उस समय में हैं, आज हम उस बात को देख पा रहे हैं। और जो इस समय के लोग हैं वो इस बात को ग्रहण करेंगे। और देखिए, इसलिए भाई और बहनों, हम एक बात को कह सकते हैं, जो प्रभु के दुल्हन के कलीसिया का हिस्सा है वो अपने दूल्हे की आवाज को सुनेगा, दुल्हन अपने दूल्हे की आवाज को सुनेगी, वो जो प्रभु ने अपना सेवक भेजा वो अपने नाम में प्रचार करने नहीं आया, वो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रचार करने के लिए आया, और जिससे के वो सारी बातें, वो सारी कमियां जो कि वचन के प्रचार में पाई जाती थीं, उन सब की बहाली हो, और हम उस कंफ्यूजन से, उस गड़बड़ी में से, उस बाबुल में से हम बाहर आ जाएं, और इस प्रारंभ के, इस प्योर और इस आरंभ के, इस पवित्र वचन में वापस आ जाएं, क्योंकि हम जो प्रभु ने शुरू में कहा, जो उसने आरंभ में कहा, और जो हमको शुरू से सिखाया और पढ़ाया गया, हम बड़े कन्फर्मेशन के साथ, बड़े अच्छाई के साथ इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु का जो वचन है, प्रभु की जो वाणी है, हम सब इस पे विश्वास करते हैं कि 11 जून 1933 को क्या कहा गया था, 87 साल उस बात को हो चुके हैं, और प्रभु ने उस बात को कहा था कि ये एक वचन वो देगा, ये वो वचन प्रभु ने उस समय उस वाणी में कहा था कि एक वचन होगा जो कि मैं तुमको दूंगा, और वो मेरी दूसरी आगमन के लिए, सेकंड कमी के लिए, दूसरी आगमन के लिए तैयारी देगा। ये नहीं कि ब्रदर ब्रैनम ये काम करेगा, नहीं, ये वो वचन जो है जो ब्रैनम को दिया गया था, नबी को दिया गया था, वो जो है तैयारी कराएगा प्रभु के दूसरी आमद के लिए। 1933 में ये बात कही गई थी, ये सारी बात है। हम उस सारे कंफ्यूजन से हमको बाहर आना है, और उस धोखे से, उस गड़बड़ी से बाहर आना है और पवित्र बनना है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पवित्र होना है। और वो कहता है कि हमें अपने वचन के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन ही पवित्र है। तो हम पवित्र कैसे बनेंगे? हम परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र बनेंगे, क्योंकि उसका वचन ही सच्चाई है। और उसने कहा और उसने लिखा और आज भी, और रैप्चर के बाद क्या होगा? मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सारे संसार में खुल के कहना चाहता
हूँ
कि इन बातों पे डिस्कशन करना, अनुवाद करना बंद कर दें। जो वचन में लिखा है, इधर उधर की बातों को डिस्कस मत करें। अगर ये बातें वचन में लिखी हैं, तो उसके बारे में, और कम से कम दो गवाहों के साथ लिखी हैं, तब उसके बारे में आप बोलें। और आप देखिए, साढ़े तीन साल के बाद में वो जो ट्रीटी होगी वो तोड़ दी जाएगी। और प्रकाशित वाक्य 11 में लिखा है कि वहां पर एक नाप तोल लिखाई गई कि जो नया मंदिर, नया टेंपल बनेगा, रेवलेशन 11 में, प्रकाशित वाक्य 11 में, कि वो जो नया मंदिर, नया टेंपल बनेगा, उसके बारे में बताया गया। और 42 महीनों के बाद में, साढ़े तीन साल का अरसा, पहले साढ़े तीन साल में दो भविष्यद्वक्ता, दो नबी आएंगे जो यरूशलेम से उठ खड़े होंगे, और वो इस समाचार को, इस पवित्र वचन का प्रचार करेंगे। और 144,000 यहूदी इसराइल में से सील किए जाएंगे, मोहर लगाई जाएगी। और उसके आखिरी के साढ़े तीन साल में, उस समय वो महान संकट एक बार फिर से यरूशलेम पर आ जाएगा, और यरूशलेम एक बारी फिर से अन्य जातियों के द्वारा यरूशलेम रौंदा जाएगा। कौन इस बात को भूल सकता है? कौन इस बात पे ध्यान ना देगा? अब देखिए, अफ्रीका में एक बहुत बड़ी, अब अफ्रीका में बड़ी लड़ाई चल रही है कि लोग कहते हैं कितने दिन तक पर वो आसमान में भोज चलेगा। सिर्फ इस बात पे ध्यान दें, सिर्फ इस बात में ध्यान दें कि हम क्या उसमें शामिल होंगे, वो कितनी देर चलेगा। इन चीजों के ऊपर क्यों वाद विवाद करते हो? और 7 साल का समय होगा, ये हमें वचन बता रहा है, बाइबल बता रही है। और उसके बाद में 1,000 साल की मिलेनियम, 1,000 साल की बादशाहत होगी 7 सालों के बाद। एक बारी फिर कहता हूँ, बाइबल को पढ़ें, वचन को पढ़ें। खाली ब्रदर ब्रैनम के सरमन की बात नहीं कर रहा, भाई यहाँ पर बाइबल में भी एक ही चीज एक ही जगह पर नहीं लिखी होती। हमको, हम देखिए प्रकाशित वाक्य सात में देखिए, वहाँ पर 144,000 की मोहर के बारे में लिखा गया है। और उसके बाद में 10:11 में लिखा गया कि वहाँ पर दो नबियों की मिनिस्ट्री होगी। देखिए, हर जगह पर वही बात एक ही जगह पर नहीं लिखी। हमको जगह जगह पर जाके ढूंढना है, जगह जगह पर हम उसको पाते हैं, उसके बाद हम उसको मिला करके तब हमको उसका पूरा का पूरा अर्थ समझ में आता है। 144,000 पहले 7 साल के भाग में वो सील होंगे, और बहुत सारे लोग बचेंगे, वो रहेंगे। आप देखिए, हर चीज इतने सही तरीके से लिखी हुई है। इसके लिए हमारे को एक आत्मिक तौर पे इसको सत्कार और रिस्पेक्ट देना है, इज्जत देनी है। अब देखिए, यहाँ हमने क्या देखा? यशाया 28 में हमने क्या देखा? दोबारा जा रहे हैं, यशायाह 28 में अभी हमने पढ़ा था कि प्रभु एक बारी फिर से उठ खड़ा होगा। हम प्रभु के वचन के पुत्र और पुत्रियां हैं। यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा पराजिम नामक पर्वत पे खड़ा हुआ था। और उसके बाद उसका जो अचंभित काम है, यशाया 28:21 को हम पढ़ रहे हैं, उसका जो अचंभित काम है, अद्भुत काम है, वो कार्य और वो कार्य करे जो अनोखा है। जिस प्रकार से सांसारिक सृष्टि हुई थी, और देखिए यहोशू जो मूसा के साथ था, यहोशू जिसको पता था कि ये जमीन कहाँ पाई जाती है, ये देश कहाँ पाया जाता है प्रभु की आज्ञा के अनुसार, और मूसा के चले जाने के बाद यहोशू ने उस सेविकाई को जो कनान देश में जाने की और विजय पाने की सेविकाई थी, यहोशू ने उस अलौकिक सेविकाई को जारी रखा और उसको लेकर चला, और वो बातें चलती रहीं और वो बातें होती रहीं, और प्रभु अपनी योजना पर कार्यान्वित है, प्रभु अपने कार्य को करे जा रहा है। हमें तो वो रास्ता नहीं पता प्रभु, पर तुझे पता है। और उसके बाद और तेरी योजना भी, जो हमने गाने में सुना कि तेरी जो योजना है वो पूरी हो, और प्रभु अपने वचन के ऊपर नजर रखता है, अपने वादों के ऊपर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। हमें उसके वादों पर विश्वास किए रहना है, और जब समय आता है तब सब चीजें उसके वादे के अनुसार पूरी होती हैं। और जैसा कि यहाँ बताया गया है, जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है सब कुछ होगा उसी प्रकार से। अब देखिए कि उन दो बातों को और उन दो बातों के बारे में, भाइयों और बहनों, ये बहुत आवश्यक है कि हम आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। ये नहीं कि कुछ भी कहते रहें, आत्मा और सच्चाई में। मैं यूहन्ना का सुसमाचार को दोबारा पढ़ना चाहूंगा, उसके चौथे अध्याय को, यूहन्ना चार तेईस को पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 4:23, एक समय आता है और समय आता है। यूहन्ना 4:23 कहता है, समय आता है वरन अब भी है जिसमें कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही, और ये बात उस उदाहरण के लिए है यहाँ देखिए 4:23 में लिखा है, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और यूहन्ना 15:8-9 में लिखा है, मत्ती 15:8-9 पढ़ रहे हैं हम, मत्ती 15 में देखिए कितनी खास बात है, मत्ती 15:8-9 ये लोग ऊंटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ में यानी बेकार में मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करते हैं।
क्या ये
बात हम आज सारी दुनिया में नहीं देख रहे हैं कि लोग इंसानों की बनाई हुई शिक्षा को, व्यर्थ की शिक्षाओं को धर्म के काम बताकर सिखा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं और इंसानों की बनाई हुई ट्रेडिशन को सिखा रहे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि वो मुझसे बेकार की यूजलेस तरीके से मेरी वर्शिप करते हैं जिसका कोई माने नहीं है, मेरे आगे मैं उसकी कोई कदर नहीं करता, प्रभु कहता है। हम एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जा सकते हैं, एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में जा सकते हैं, पर सबके अंदर वही रीति रिवाज, वो उनके अंदर विश्वास की बातें तो हैं पर और वो उस गेट तक तो खड़े हैं पर वो क्या शिक्षा देते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं, पर उनके जो प्राध्यापक हैं, जो उनकी स्थापना करने वाले लोग हैं, जो उनके पुरखे हैं, जो गुरु हैं, जो वो सिखाते हैं, वो उस पर चलते हैं। वन प्रभु जब इस समय धरती पर चलता था, धरती पर था, तो उसके लोग जो इज़राइल के लोग और उसके बड़े महायाजक और शास्त्री और वो बड़े बड़े भजन गाया करते थे, वो अपनी दुआएं किया करते थे और हर समय पर वो परमेश्वर की बातों को तो भूल जाते थे और रीति रिवाजों की बातों को याद करके सिखाया करते थे। और प्रभु का हर काम, हर योजना उसके काम के अनुसार होती है। हमारे पास बहुत सारे पाठ हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। प्रभु हमको ऐसा अनुग्रह दे, प्रभु हमको इतने आभारी हृदय दे कि हम उसको महिमा दे पाएं, कि हम उन सारी शिक्षाओं में से बाहर आ जाएं, हम उन सारी चीजों को छोड़ जाएं, हम केवल प्रभु के वचन पर, खालिस वचन पर, उसके वादों पर भरोसा रखें। जिस प्रकार से मुझे याद है, हमने सिर्फ उन बातों पर विश्वास किया जो बाइबल में लिखी हैं, जो बाइबल में वचन में लिखी हैं, और ऐसा ही हम अंत के समय तक भी करेंगे। जो बातें लिखी हैं उनको ही मानेंगे, उन पर ही चलेंगे। अब हम देखते हैं सारांश में, आखिर में हम क्या देखते हैं, प्रभु की एक योजना है, प्रभु की एक योजना उसके कलीसिया के लिए है, और जो उसके खून खरीदे लोग हैं उनके लिए एक उसके और वो लोग उसकी विरासत के भागी हैं क्योंकि उसने उनके लिए अपने जीवन को दिया, उस बलिदान को दिया। पर इस समय ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अपने उद्धार के काम को पर्सनल तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से अनुभव कर पाए। क्या हम अनुभव कर पा रहे हैं उसको, हम अनुभव कर पाए कि परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर की सारी योजना हमारे जीवनों में एक आरंभ आ जाए। वो आरंभ ये है कि क्या हम परमेश्वर की इस योजना के अंतर्गत आ गए हैं या नहीं आ गए हैं, और जिससे कि प्रभु जब वो खड़ा हो और जिससे कि प्रभु जब आखिरी बारिश, बाद की बारिश को दिखाए, तब वो सारे के सारे अचंभे के कान, तब हमको ज्यादा देर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज्यादा देर तक प्रार्थनाएं नहीं करनी पड़ेगी, हम तो सिर्फ मुंह से बोलेंगे और ऐसा हो जाएगा। और क्योंकि आत्मा की अगुवाई में ऐसे काम होंगे कि हम जो विश्वासी हैं, हम मुंह से वचन बोलेंगे और वो कार्य हो जाएगा। और जिस प्रकार से यहोशू ने कहा اور چاند سے کہا، سورج سے کہا، تھم جا اور رک جا، اور وہ رک گئے. یہ منہ سے بولا ہوا وچن تھا جو کہ اس سمے استھاپت ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا، ونڈیکیٹ ہو گیا. اور یہ سمے جو پربھو نے دکھایا، یہ سمے اب پربھو نے جو اپنے اس سمے کو کمپلیٹ کرنا ہے، کام کو کمپلیٹ کرنا ہے، یہ ایک بہت چھوٹا سا سمے ہوگا، یہ شارٹ سمے ہوگا، بہت سمے پر بڑا سامرتھ والا سمے ہوگا، پر یہ سمے ضرور ہوگا کہ جبکہ اتنے سامرتھی کام ہوں گے اور وچن کے بولتے ہی کام ہو جائیں گے. دیکھیے یہ بات کتنی ادبھت ہے، یہ کتنی الوکک بات ہے. اس میں ہمیں وشواس میں بہت مضبوط اور قائم رہنے کی ضرورت ہے. یہ صرف بھائی یہ پال کا یا میرا یا برنم کا ورڈ نہیں ہے، یہ ہماری وانی نہیں ہے، یہ تو پربھو کی وانی ہے کہ جو پربھو نے جو اپنی کلیسیا استھاپت کری ہے، جو پہلوٹے کی کلیسیا ہے، کہ یہ جو آخری سندیش جو ہے، یہ جو آخری وچن، آخری پکار ساری دنیا میں چل رہی ہے. پربھو جانتا ہے 55 سال ہو چکے ہیں 1964 سے میں پہلی بار اپنی مشنری ٹرپ پہ انڈیا گیا، جو میری پہلی ٹرپ تھی. میں سارے سال جانتا ہوں اور پربھو نے ساری دنیا کے اندر راستے کھولے، ساری دنیا کے اندر دروازے کھولے پربھو نے. اور اس کا وچن جو ہے، اور اس کا جو وچن وہ ہمیشہ کا جو وچن، وہ ایک بار پھر کہنا چاہوں گا، یہ جو وچن ہے، یہ جو بائبل ہے، یہ میرے ہاتھ میں ایک واچا ہے، یہ ایک وچن ہے، یہ ایک آتمک ڈاکومنٹ ہے، یہ نیا نیم ہے، جو نئی واچا ہے، یہ پربھو کے خون سے رچی ہوئی نئی واچا ہے، خون کے دوارا استھاپت کی گئی نئی واچا ہے. اور یہ وہ کلیسیا ہے جو کہ اس کے اس خون سے خریدی گئی ہے، اس سے صاف کی گئی ہے، جس کی خاطر پربھو نے اپنا خون بہایا، اور پربھو نے اس کو ہمیں استھاپت بھی کیا، اس کا پرکاشن ہمیں بتایا، اس نے یہ ہمیں بتایا، ہم پر ظاہر کیا کہ ہم اس کی سنتان ہیں. اور پربھو نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا، ہم اس پر وشواس کرتے ہیں، اور ہم اس کو اپنے جیونوں کے اندر، ہم اس کے جیونوں کے اندر اس کا پرگٹیکرن دیکھیں گے اور اس کو پراپت کریں گے. اور ہم یوحنا 4 کے ساتھ اپنے اور متی 15 اور جو جیسا ابھی ہم نے پڑھا کہ لوگ الگ الگ چرچز کے ڈاکٹرن، الگ الگ شکشائیں کر رہے ہیں اور پربھو کے وچن کے وپریت چل رہے ہیں، پربھو کے وچن کے برخلاف چل رہے ہیں، پربھو کے وچن پہ دھیان ہی نہیں دے پا رہے. اور پربھو کی سنتان پر، پربھو کے جنوں پر، جو اس کے جن ہیں، ہم پر اس کا پرکاشن ہوتا ہے، جس سے کہ ہم پربھو کو مہیما دیتے ہیں، اور ہم اس کو یہ عزت دیتے ہیں کہ آرادھنا آپس میں وچار نہ کریں. میں بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو سیوکائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بٹوارا ہوتے ہیں. پربھو کے ہر ایک وچن کو، پربھو کے ہر ایک شبد کو میں خاص طور پہ سیوک بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ وچار کریں، اور پربھو کی جو پرستش ہے، اس کی جو آرادھنا ہے، ہم سچائی اور آتما میں ہو کر سکیں، جیسا کہ ہم نے یوحنا 4 ادھیائے میں پڑھا. یہ بہت ضروری ہے. جہاں ڈسکشن ہے، واد وواد ہیں، ان کو ابھی یہ نہیں پتا، ابھی تک ان کو یہ پرکاشن نہیں مل پایا کہ پربھو آج کیا کر رہا ہے، تبھی تو واد وواد ہے، تبھی تو وہاں ڈسکشن ہے، تبھی تو وہاں وچار دھارا ملتی نہیں، تبھی تو وہاں بٹوارے ہیں. پربھو ہم سب کو آشیش دے کہ اپنے انوگرہ کے دوارا آشیش دے. اور پربھو ہم سب جہاں پر بھی ہیں، ہم کھڑے ہو کر اس کو آدر ستکار دیں، اور پربھو کو ہم دھنیواد دیں گے. ہم پربھو کو دھنیواد دیتے ہیں. پربھو ہمارے سرو شکتیمان پتا، ہمارے ہردے ہمیشہ اس بات سے بھرے ہوئے ہیں پربھو آبھار کے ساتھ کہ وہ سارے کام جو تُو نے ہمارے لیے کیے پربھو جیون میں، और तेरे अद्भुत वचन के द्वारा हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ऐसा होने दिया है प्रभु, क्योंकि तू ही उस काम को कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा जो कि तूने हमारे जीवनों में शुरू किया, और हम इसको अपने जीवनों में होता हुआ देखना चाहते हैं। और भाई ब्रैनम की सेवकाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और उस पुकार के लिए और उसके प्रकटीकरण के लिए, उसके कामिल किए जाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु तू अपने वचन को हमारे जीवनों में पूरक करेगा, और जो विश्वास करते हैं सच्चे दिल से उनके जीवनों में और अपने 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 जीवनों में, हे प्रभु। और प्रभु और तू उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे को पूरक करेगा, हमारे को उद्धार के दिन तक के लिए तू हम पर पवित्र आत्मा की मोहर देगा, और सिर्फ तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम का ही अनुग्रह है। हम तेरे अद्भुत नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो।